एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद मोल भाव मतलब निगोसिएशन के बारे में हमारी पूरी सोच ही बदल दे।
बिल्कुल, ये किताब है क्रिस वॉस की नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, और इसका शीर्षक ही कहता है कभी बीच का रास्ता मत अपनाओ।
हाँ, सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। हम तो यही सीखते आए हैं कि समझौता करना अच्छी बात है।
सही कहा, और इसीलिए ये किताब इतनी जरूरी हो जाती है। हम सब, आप सोचिए, लगभग हर दिन ही तो मोल भाव करते हैं जाने अनजाने।
हाँ बिल्कुल, ऑफिस में सैलरी की बात हो या फिर सब्जी वाले से भैया थोड़ा कम लगा लो,
या घर पर बच्चों को होमवर्क के लिए मनाना, हर जगह है ये।
सही।
और अक्सर हमारे वो पुराने तरीके जो लॉजिक और हाँ भाई बीच का रास्ता निकाल लो उस पे टिके होते हैं, वो काम नहीं आते।
क्यों क्यों काम नहीं होते?
क्योंकि इंसान हमेशा कहाँ तर्क से चलते हैं ना। ये किताब हमें सिखाती है कि बातचीत असल में भावनाओं को समझने का और उन्हें सही दिशा देने का खेल है।
और ये सब कौन बता रहा है? एफबीआई का एक पूर्व हॉस्टेज निगोशिएटर।
हाँ, सोचिए जरा।
ये तो वाकई दिलचस्प है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं इन साहब के बारे में, क्रिस वॉस। मतलब ऐसा क्या खास अनुभव है इनका जो ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि समझौता नहीं करना चाहिए?
देखिए, क्रिस वॉस कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या सिर्फ थ्योरी बताने वाले एक्सपर्ट नहीं हैं। ये वो इंसान हैं जिन्होंने 24 साल एफबीआई में काम किया है।
24 साल?
हाँ, और उसमें से भी कई साल वो एफबीआई के लीड इंटरनेशनल किडनैपिंग निगोसिएटर थे, मतलब मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अपहरण वार्ताकार।
बाप रे।
इसका मतलब है दुनिया भर में जो अपहरण होते थे, आतंकवादियों से, खतरनाक ग्रुप से, लोगों की जान बचाने के लिए बातचीत करना, ये उनका काम था।
150 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बंधक संकट, फिलीपींस में अलकायदा, न्यूयॉर्क में बैंक डकैती। ये तो वो अनुभव है जो मतलब जान हथेली पर रखकर ही मिलता है। ये किताबी बातें नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये जमीनी हकीकत है। उनकी सारी तकनीकें, उनकी सारी समझ, वो वहीं से निकली है, उन बेहद तनाव वाली इमोशनल सिचुएशन से जहां एक गलत शब्द का मतलब था किसी की जान चली जाना। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो पुराने तरीके जो तर्क पर आधारित थे वो बुरी तरह फेल हो जाते थे ऐसी स्थितियों में।
तो उनका नजरिया एकदम प्रैक्टिकल है, जमीनी है और शायद थोड़ा हटकर भी।
बिल्कुल, और वो कहते हैं कि जो तकनीकें उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक और इरैशनल समझे जाने वाले लोगों के साथ इस्तेमाल की, वो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी उतनी ही असरदार है।
अच्छा, मतलब ऑफिस में, घर पर, सब जगह।
हाँ, इसीलिए अब वो अपनी कंसल्टेंसी चलाते हैं, द ब्लैक स्वान ग्रुप, और बड़ी बड़ी कंपनियों और यूनिवर्सिटीज में यही सब सिखाते हैं। और उनका दावा बहुत सीधा है, अगर ये तरीके उन पे काम कर सकते हैं जो किसी की जान लेने से नहीं हिचकिचाते, तो भाई आपके बॉस, आपके क्लाइंट या सब्जी वाले पर तो जरूर काम करेंगे।
हाँ हाँ सही है, क्योंकि आखिर में तो सब इंसान ही है, भावनाओं वाले।
बिल्कुल,
ठीक है, तो इस किताब का सार क्या है? मतलब अगर हमें किसी को बस 1 मिनट में बताना हो कि ये किताब है किस बारे में, तो क्या कहेंगे?
देखिए, ये किताब ना बातचीत की कला और उसके पीछे के मनोविज्ञान पर एक जबरदस्त गाइड है। और सबसे अच्छी बात, इसे बंधक संकटों की सच्ची रोमांचक कहानियों के साथ समझाया गया है, तो पढ़ने में बोरिंग बिल्कुल नहीं लगती।
अच्छा,
इसका मेन मकसद है बातचीत के पुराने वो तर्क वाले तरीकों को चैलेंज करना और एक नया, ज्यादा शक्तिशाली तरीका सिखाना जो भावनाओं और सहानुभूति पर टिका हो।
हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि बातचीत कोई दिमागी कसरत या सिर्फ लेन देन नहीं है, ये एक भावनात्मक खोज है, एक इमोशनल जर्नी।
सही,
वॉस इस आम सोच को तो बिल्कुल नकारते हैं कि नेगोशिएशन में दो लोग अपनी अपनी पोजीशन रखते हैं और बेस्ट रिजल्ट होता है बीच का रास्ता। वो कहते हैं ये बीच का रास्ता अक्सर दोनों के लिए ही बुरा होता है, मतलब किसी को भी वो नहीं मिलता जो वो सच में चाहते थे।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये एक आलसी अप्रोच है। इसके बजाय वो कहते हैं कि बातचीत एक साइकोलॉजिकल आर्ट है, मनोविज्ञान की कला।
अच्छा,
इसकी जड़ें हैं इंसानी भावनाओं को और हमारी जो छिपी हुई जरूरतें होती है ना, उनको समझने और उन्हें प्रभावित करने में। दिक्कत यह है कि जो पुराने मॉडल हैं, जैसे हार्वर्ड वाले भी, वो ये मानकर चलते हैं कि इंसान लॉजिकल है, तर्क से सोचता है।
हाँ, रैशनल एक्टर वाली थ्योरी।
एग्जैक्टली, पर वॉस कहते हैं हम ऐसे नहीं हैं। हम सब असल में अपनी गहरी भावनात्मक जरूरतों से, हमारे सोचने के कुछ पक्के तरीके होते हैं जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं, और हमारी छिपी हुई इच्छाओं से चलते हैं।
तो फिर सफल कैसे हो अगर लोग तर्क से नहीं चलते?
सफलता का राज भावनाओं को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना, समझना और फिर बड़ी कुशलता से संभालना है।
ओके।
और इसी के लिए वॉस ने एक टर्म दिया है, टैक्टिकल एम्पथी।
टैक्टिकल एम्पथी, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब है, टैक्टिक्स और एम्पथी एक साथ।
हाँ, सुनने में है, पर इसका मतलब हमदर्दी जताना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले के लिए बुरा महसूस करें या उससे सहमत हों।
तो फिर
इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं और उसके नजरिए को, उसकी दुनिया को रणनीतिक रूप से समझना, स्ट्रेटेजिकली, ताकि आप उनका भरोसा जीत सके।
अच्छा।
भरोसा जीतने के लिए समझना,
हाँ।
और फिर धीरे धीरे उन्हें उस समाधान की तरफ ला सकें जो आप चाहते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है?
क्या?
उन्हें ऐसा लगे कि आइडिया उन्हीं का था।
वाह, ये तो कमाल है।
बिल्कुल। और किताब हमें ये करने के तरीके सिखाती है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए कुछ मेन टेक्निक्स देखते हैं। एक बहुत ही बेसिक और पावरफुल टेक्निक है मिररिंग, मिरर दिखाना।
आईना दिखाना। कैसे? शीशा लेके खड़े हो जाएं?
नहीं, इसका मतलब है सामने वाला जो कह रहा है उसके आखिरी के बस 1 से 3 शब्द आप सवाल की तरह दोहरा दें,
अच्छा,
बस इतना ही।
जैसे
जैसे अगर कोई कहे ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप बस आराम से कहें मुश्किल लग रहा है। ये सुनने में बहुत ही मामूली लगता है, पर वॉस कहते हैं ये जादू की तरह काम करता है। ये कॉपी करना नहीं है, ये दिखाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, और ये सामने वाले को और बोलने के लिए उकसाता है।
ओके।
लोग अनजाने में ही ज्यादा बताने लगते हैं, ज्यादा जानकारी देने लगते हैं।
लेकिन इससे सामने वाला इरिटेट नहीं होगा कि मेरी नकल कर रहा है?
नहीं, अगर इसे सही टोन में किया जाए, मतलब सच्ची जिज्ञासा के साथ, न कि मजाक उड़ाते हुए, ये कनेक्शन बनाता है।
ठीक है, मिररिंग।
और इसके बाद आती है लेबलिंग। ये टैक्टिकल एम्पथी का एक और जरूरी हिस्सा है। इसमें आप सामने वाले की भावना को पहचानते हैं और उसे नाम देते हैं, जोर से
उनकी फीलिंग को बोल देना। कैसे?
हाँ, आमतौर पर आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा लगता है, सुनकर लगता है, देखकर लगता है, इन वाक्यों से।
अच्छा,
मान लीजिए आपका क्लाइंट गुस्से में है क्योंकि कोई काम देर से हुआ। आप कह सकते हैं, लगता है आप इस देरी से काफी निराश हैं, या सुनकर लग रहा है आपको चिंता है कि ये टाइम पर पूरा नहीं होगा।
ओके। इसका फायदा क्या है?
वॉस कहते हैं कि जब आप भावना को नाम देते हैं तो उसका जोर कम हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाती है, और सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये मुझे समझ रहा है, फिर वो शांत होकर बात करने लगते हैं।
ये दिलचस्प है। हम तो अक्सर नेगेटिव फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं, और ये कह रहे हैं उसे बोलो।
बिल्कुल, पहचानो और बोलो।
लेकिन अगर मैंने कहा लगता है आप निराश हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं मान रहा हूं कि उनकी निराशा जायज है, या मैं उनकी बात से सहमत हूं?
नहीं, यही तो टैक्टिकल एम्पथी का कमाल है। समझना मतलब सहमत होना नहीं है, आप बस उनके नजरिए को, उनकी भावना को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। आप कह सकते हैं लगता है आप निराश हैं, बिना ये कहे कि हाँ आपको निराश होना ही चाहिए।
अच्छा, ये बारीक फर्क है, समझना है, सहमत होना नहीं।
एग्जैक्टली। और यहां से एक और बड़ा क्रांतिकारी आइडिया आता है, नहीं की ताकत।
नहीं की ताकत? ये कैसे? नहीं तो मतलब बातचीत खत्म, डेड एंड।
पारंपरिक सोच यही कहती है, पर वॉस कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। नहीं अक्सर बातचीत की असली शुरुआत होती है।
शुरुआत? कैसे?
सोचिए, जब लोगों को हाँ कहने के लिए मजबूर किया जाता है, या उन्हें लगता है कि हाँ ही बोलना पड़ेगा, तो वो कैसा महसूस करते हैं? फंसा हुआ?
हाँ, दबाव में।
और फिर वो शायद नकली हाँ कह दें, जिस पर वो बाद में टिकेंगे नहीं। लेकिन जब कोई इंसान खुलकर नहीं कह पाता है, तो उसे कैसा महसूस होता है?
ज्यादा कंट्रोल में, सुरक्षित।
बिल्कुल, उसे लगता है कि वो अपनी बात रख सकता है, वो सुरक्षित है, उस पर दबाव नहीं है, और तब वो ज्यादा ईमानदारी से बात करता है। इसीलिए बॉस कहते हैं कि हमें ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका जवाब शायद नहीं में आए।
अच्छा, जैसे?
जैसे आप पूछ सकते हैं, क्या ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि, या क्या आपने इस ऑप्शन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है? इससे सामने वाला नहीं कहकर अपनी बात शुरू कर सकता है। नहीं से डरना नहीं है, उसका स्वागत करना है।
वाह, ये तो वाकई सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। हाँ के पीछे मत भागो, नहीं को समझो, ठीक है? और अगला बड़ा आइडिया क्या है?
अगला बड़ा लक्ष्य है सामने वाले से ये कहलवाना, दैट्स राइट।
दैट्स राइट मतलब हाँ, बात तो यही है।
हाँ, और ध्यान दीजिए, ये योर राइट यानी हाँ तुम सही हो से अलग है।
अलग कैसे?
योर राइट अक्सर लोग तब कहते हैं जब वो आपकी बात टालना चाहते हैं। अच्छा भाई तुम सही हो, अब बात खत्म करो।
हाँ होता है ऐसा।
लेकिन जब कोई कहता है दैट्स राइट, उसका मतलब है कि उसे दिल से ये महसूस हुआ है कि आपने उसकी बात को, उसकी सिचुएशन को पूरी तरह से समझ लिया है, एकदम सही पकड़ा है।
अच्छा, ये गहरी समझ का सिग्नल है।
बिल्कुल। और ये कैसे हासिल होता है?
कैसे?
उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर, उनकी भावनाओं को लेबल करके, और फिर उनकी पूरी बात का, उनके नजरिए का एक सटीक सारांश देकर।
हाँ।
जब आप उनकी बात को इतने अच्छे से उनके सामने रखते हैं, शायद जितना वो खुद भी नहीं रख पाते।
हाँ।
तब वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, बात तो यही है। और वॉस कहते हैं ये वो मैजिकल मोमेंट है, ये वो पल है जब असली बदलाव की, असली समझौते की गुंजाइश बनती है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि आप वाकई उन्हें समझते हैं।
वाह, पहले मिररिंग से उन्हें बुलवाओ, फिर लेबलिंग से भावना समझो, और फिर समरी से दैट्स राइट तक पहुंचाओ। सुनने में एक प्रोसेस लग रहा है।
हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस चाहिए होती है इसमें।
और इसके अलावा कोई और खास तकनीक?
हाँ, फिर आती है कुछ रणनीतिक चीजें, जैसे कैलिब्रेटेड प्रश्न पूछना।
कैलिब्रेटेड प्रश्न ये क्या होते हैं?
ये ओपन एंडेड सवाल होते हैं, मतलब जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, और ये आम तौर पर क्या या कैसे से शुरू होते हैं।
अच्छा, क्यों से नहीं?
नहीं, वॉस कहते हैं क्यों से बचो, क्योंकि क्यों सुनने में अक्सर आरोप जैसा लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया।
हाँ लगता है।
तो क्या और कैसे वाले सवाल, इनका मकसद होता है सामने वाले को सोचने पर मजबूर करना। उन्हें ऐसा लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन असल में आप बातचीत को दिशा दे रहे होते हैं।
कोई उदाहरण?
जैसे वो वाला सवाल जो आपने भी पसंद किया था। मान लीजिए कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कह रहा है जो नामुमकिन लग रहा है, बजाय ये कहने के कि मैं ये नहीं कर सकता, आप क्या पूछ सकते हैं?
मैं ये कैसे कर पाऊंगा?
बिल्कुल, ये सवाल विनम्रता से नहीं कहता है, ये टकराव नहीं पैदा करता, बल्कि सामने वाले को आपकी मुश्किल समझने और मिलकर समाधान खोजने के लिए न्योता देता है। वो सोचने लगते हैं हाँ यार ये कैसे करेगा।
कमाल का सवाल है ये तो, इसे तो सच में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जो भारत में बहुत कॉमन है, मोल भाव, बार्गेनिंग, कीमत पर। इसके लिए भी कुछ है किताब में?
हाँ हाँ बिल्कुल है, उसके लिए वॉस एक पूरा मॉडल देते हैं जिसका नाम है एकमैन मॉडल।
एकमैन मॉडल?
हाँ, ये थोड़ा डिटेल्ड है पर इसका बेसिक आइडिया समझ लेते हैं।
बताइए।
पहला स्टेप, आप अपना एक टारगेट प्राइस सोच लीजिए, मतलब आप कितना देना चाहते हैं या कितना पाना चाहते हैं।
ठीक है।
दूसरा, अपनी पहली पेशकश उस टारगेट के लगभग 65% पर करें।
इतना कम? 65%? सामने वाला भड़क नहीं जाएगा?
शायद थोड़ा चौंके, पर यहीं से शुरू करना है। इसे एंकरिंग कहते हैं, आप एक लो पॉइंट सेट कर रहे हैं।
ओके, फिर?
फिर आप धीरे धीरे 3-4 किश्तों में अपनी पेशकश बढ़ाएंगे, लेकिन हर बार बढ़ोतरी पहले से कम होगी। मान लीजिए पहले 20% बढ़ाया, फिर 10%, फिर 5%।
अच्छा, घटते हुए क्रम में?
हाँ, और इन पेशकशों के बीच में आप मिररिंग, लेबलिंग, कैलिब्रेटेड सवालों का इस्तेमाल करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे।
ठीक है।
और आखिरी पेशकश?
आखिरी पेशकश
जब आप देंगे तो वो एक अजीब सी नॉन राउंड फिगर होनी चाहिए, जैसे 20,000 के बजाय 19,850 रुपए, ऐसा कुछ।
अजीब फिगर क्यों?
क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कैलकुलेशन किया है, बहुत सोचा है, और आप अपनी बिल्कुल आखिरी लिमिट पर पहुंच गए हैं। ये साइकोलॉजिकल है। और साथ में उस आखिरी ऑफर के साथ कोई छोटी सी नॉन मॉनिटरी चीज जोड़ दे, मतलब पैसे से जुड़ी नहीं, जैसे ठीक है 19,850 और मैं इंस्टॉलेशन फ्री करवा दूंगा।
ओके, इससे क्या होगा?
इससे ये सिग्नल जाता है कि भाई अब मेरे पास पैसे कम करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, मैंने अपनी जेब से ये एक्स्ट्रा चीज दी है। इससे सामने वाले को लगता है कि हाँ मैंने इससे बेस्ट डील निकलवा ली है, और वो मान जाते हैं।
वाह, ये तो पूरा मोलभाव का विज्ञान है, कीमत के साथ साथ मनोविज्ञान का खेल।
बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर के बारे में नहीं है, ये सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में है।
तो अगर हम इन सब टेक्निक्स को देखें, मिररिंग, लेबलिंग, नहीं की कला, दैट्स राइट का लक्ष्य, कैलिब्रेटेड प्रश्न, एकमैन मॉडल, तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं इस किताब से?
हाँ, कुछ कोर मैसेजेस हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, भावनाएं तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है, खासकर जब दबाव हो। तो बातचीत में भावनाओं को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। उन्हें समझो, लेबल करो और उन्हें दिशा दो।
बिल्कुल। और दूसरा, वो टैक्टिकल एम्पथी। ये सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, सामने वाले की दुनिया को समझना, भले ही आप उससे सहमत ना हो, ताकि आप उन्हें प्रभावित कर सकें। भरोसा इसी से बनता है।
तीसरा, बातचीत एक खोज है, जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, लड़ाई नहीं। आपका लक्ष्य जीतना नहीं, ज्यादा से ज्यादा जानना है, क्योंकि सही जानकारी होगी तभी सही समाधान निकलेगा। इसीलिए सुनना इतना जरूरी है।
और चौथा, नहीं से डरो मत और दैट्स राइट तक पहुंचने की कोशिश करो। ये असली कामयाबी के निशान हैं, हां से भी ज्यादा।
पांचवा, कंट्रोल दो ताकि कंट्रोल मिले। कैलिब्रेटेड सवाल यही करते हैं। सामने वाले को लगता है वो गाड़ी चला रहे हैं, पर स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है।
और आखिर में वो बात जो किताब का टाइटल है, बीच का रास्ता, स्प्लिटिंग द डिफरेंस, अक्सर सबसे बुरा रास्ता होता है। ये आलस का नतीजा है। असली लक्ष्य है क्रिएटिव समाधान खोजना, जो दोनों पक्षों की असली, शायद छिपी हुई जरूरतों को पूरा करें।
इस किताब में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक तो टाइटल ही है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, कभी बीच का रास्ता मत अपनाओ।
ये सीधे सीधे उस आम सोच को नकारता है कि समझौता ही बेस्ट है।
और ये वाला भी बहुत पावरफुल है, लक्ष्य यस तक पहुंचना नहीं बल्कि दैट्स राइट तक पहुंचना है। ये फोकस ही बदल देता है, जबरदस्ती की हां से सच्ची समझ तक।
मुझे वो सवाल बहुत पसंद आया, और शायद सबसे प्रैक्टिकल भी, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, ये बिना लड़े अपनी बात रखने का, अपनी लिमिट बताने का, कितना अच्छा तरीका है।
हाँ, ये बहुत काम का है। और वो परिभाषा भी, बातचीत लड़ाई नहीं खोज है, लक्ष्य ज्यादा जानकारी उजागर करना है, ये पूरी अप्रोच को ही बदल देता है, टकराव से सहयोग की तरफ।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्रांतिकारी भी, लेकिन सवाल वही, क्या ये सच में हमारी डे टू डे लाइफ में काम आ सकता है, यहाँ इंडिया में जहाँ चीजें थोड़ी अलग होती हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। सोचिए, ऑफिस में सैलरी नेगोशिएशन, सीधे ये मत कहिए मुझे इतने पैसे चाहिए, एक्मे मॉडल ट्राई कीजिए, कैलिब्रेटेड सवाल पूछिए, इस रोल में मेरे जैसे एक्सपीरियंस वाले के लिए मार्केट में क्या रेंज चल रही है, बॉस की चिंता को लेबल कीजिए, लगता है बजट को लेकर थोड़ी सख्ती है।
हाँ, या मान लीजिए कोई क्लाइंट है जो बहुत नाराज है, उससे बहस करने के बजाय पहले लेबलिंग कीजिए, सुनकर लग रहा है आप इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, फिर कैलिब्रेटेड प्रश्न पूछिए, हम मिलकर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आप खुश हो।
बिल्कुल, इससे वो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं, सॉल्यूशन का हिस्सा महसूस करेंगे। और घर पर, रिश्तों में, पार्टनर से बहस हो रही है, फैक्ट्स पर लड़ने के बजाय फीलिंग्स को लेबल कीजिए, लगता है जब मैं देर तक काम करता हूँ तो तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, देखिए बातचीत कहाँ जाती है।
बच्चों के साथ तो ये पक्का काम आएगा, खासकर टीनेजर्स, जब वो कहें आप नहीं समझोगे, तो मिररिंग ट्राई करें, मैं नहीं समझूंगा, उन्हें बोलने दें, फिर कैलिब्रेटेड प्रश्न, तुम होमवर्क भी पूरा कर लो और दोस्तों से भी मिलो, ये कैसे मैनेज करोगे, उन्हें खुद सोचने दें।
और हाँ, खरीदारी, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, कार डीलर से बात करते हुए या मकान मालिक से रेंट पर, कीमत पर हैरानी जताते हुए पूछिए, ये कीमत तो उम्मीद से थोड़ी ज्यादा है, हम इसे कैसे मुमकिन बना पाएंगे, देखिए क्या जवाब मिलता है।
हाँ, मतलब बात यह है कि ये तकनीकें हमें थोड़ा धीमा होना सिखाती हैं, ज्यादा ध्यान से सुनना और दूसरे के नजरिए को लेकर ज्यादा जिज्ञासु बनना।
सही कहा, और शायद इससे सिर्फ बेहतर डील ही नहीं मिलती, रिश्ते भी बेहतर होते हैं, क्योंकि आप दूसरे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे होते हो।
मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हर इंसानी बातचीत, चाहे वो कितनी भी मामूली लगे, वो असल में भावनाओं का खेल है, और ये किताब उस खेल को खेलने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट देती है। और वो आइडिया कि कंट्रोल छोड़ने से कंट्रोल मिलता है या नहीं, एक मौका है, ये वाकई सोच बदलने वाला है।
और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये तकनीकें कितनी एक्शन लेने लायक हैं। मिररिंग, लेबलिंग, कैलिब्रेटेड प्रश्न, इन्हें आप कल से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये किताब दिखाती है कि दूसरों को समझना और मनाना कोई जादू नहीं है, इसके लिए चालाकी या जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि सच्ची दिलचस्पी और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। ये सिर्फ नेगोशिएशन पर किताब नहीं, ये ज्यादा इफेक्टिव इंसान बनने की गाइड भी है।
सच में एक नया नजरिया मिला सोचने के लिए। अब देखना यह है कि ये छोटी छोटी चीजें रोज की बातचीत में कितना फर्क लाती हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।